السلام علیکم سامعین. آج پیر 15 ربیع الاول 1439 ہجری 4 دسمبر 2017 اور 21 مگر ڈی پاکستان کے نیوز اینڈ فرنٹ افیئرز چینل سے پروگرام پیش خدمت ہے نیا دن. میں ہوں پروگرام کی میزبان فوزیہ کلثوم رانا. تبصرے اور تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی معروف تجزیہ کار رانا کیسر.
السلام علیکم.
سامعین نیا دن میں ہم دن کے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور اسٹوڈیو میں موجود ماہر تجزیہ کاروں سے بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم اپنے ماہر تجزیہ کاروں کو ٹاپک کے مطابق شامل کرتے ہیں. آج نیا دن کا جو سب سے اہم موضوع ہے ہم بات کریں گے کہ حکومت نے عوام کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے اور حکومت کا 60% سے جو زائد فیڈرز ہیں ان پر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے. بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر میں بات کروں تو جو منشور تھا الیکشن جیتنے کے بعد سے قیام امن اور توانائی بحران کا حل, یہ دونوں جو ترجیحات بنائی گئی تھی اور آپ کو بتائیں سامعین ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے گئے. توانائی ڈویژن کے وزیر کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے پاکستان کے پہلے مرحلے میں 5,297 جو فیڈرز ہیں ان سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آپ کو بتائیں کہ توانائی ڈویژن کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے اتوار کی شام اسلام آباد میں نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 8,600 فیڈرز میں سے صرف 236 ایسے ہیں جن پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. ان کا کہنا تھا کہ فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, اس میں لیسکو کے 1227, گیپکو کے 748, جبکہ فیسکو کے 896, آئسکو کے 710, یفکو کے 763, پیسکو کے 309, ہیسکو کے 204, کوئسکو کے 61 اور قبائلی علاقوں کے اگر فیڈرز کی بات کی جائے تو 29 فیڈرز شامل ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 5,000 سے زائد فیڈرز کی. رانا کیسر آپ کی جانب آؤں گی, منشور میں شامل کیا گیا تھا کہ توانائی بحران کا حل اور اس میں بہت بڑی کامیابی ہمیں اگر نظر آتا ہے اس اعلان میں کہ 60% سے جو زائد فیڈرز ہیں ان پر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا, عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری.
بہت بڑی اچیومنٹ ہے فوزیہ. یہ آپ کو یاد ہے کہ جب 2013 میں پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت جو دو تین بڑے پاکستان کے مسائل تھے, ٹیررزم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اکانومی کا ایشو تھا, تو اس میں سب سے امپورٹنٹلی اگر ہم دیکھیں تو انرجی کرائسس تھا.
جی
16 سے 18 گھنٹے تک ایون شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک ایسی صورتحال تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ شاید اب پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا. حکومت جب پی ایم ایل این نے سنبھالی تو پہلا جو پرائیورٹی پہ کام تھا وہ یہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ اکانومی ٹھیک کرنی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے جب اگر آپ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو جب تک آپ کے یہاں انرجی نہیں ہے تو پھر اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, لوگوں میں ایک اضطراب ہے, ایک انسرٹینٹی کی سی اور ایک ہوپ لیسنس کی جو ایک صورتحال ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے پرائیورٹائز کیا گیا. اور بجلی کے معاملے میں خاص طور پہ توجہ کی گئی, بہت سارے پروجیکٹس لانچ کیے گئے. لکیلی پاکستان کا پھر سی پیک کے ساتھ بھی ایک ہمارا سلسلہ ہوا جس میں آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف 46 بلین ڈالرز 35 بلین ڈالرز جو ہیں وہ انرجی کے سیکٹر کے لیے رکھے گئے, جس میں سے تقریباً 28 ارب ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان پروگرس ہیں.
بالکل رانا صاحب آپ سے بات کریں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت ہمیں معروف انڈسٹریلسٹ ہیں مرزا اختیار بیگ, ماہر اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ فرمائیے گا جو ایک بڑی خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے, 60% سے زائد جو فیڈرز ہیں ان پر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے, توانائی بحران کا حل, قیام امن کا مسئلہ اور اسی سے ریلیٹڈ ہے ہماری اکانومی, ہماری اقتصادیات, اگر توانائی ہوگی اگر ہماری صنعتیں چلیں گی. جی تو سر فرمائیے گا آپ کیا کہتے ہیں کہ توانائی بحران کا حل 60% سے زائد جو فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے, معاشی نقطہ نظر سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ حکومت کی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو پلان بنایا تھا इलेक्शन से पहले के मुल्क को लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। तो ये जो ऐलान है मिनिस्टर साहब का, ये उसी की सिमत में है, जिसके लिए हुकूमत यकीनन उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन हमें ये देखना है कि ये लोड शेडिंग से जो खात्मा का ऐलान हुआ है कितने मुस्तकिल बुनियादों पर है, ये सस्टेनेबल होना चाहिए। ये हमारे मुल्क ये होता है कि जैसे आजकल तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो लोड पीक लोड कम है, एसी जरा कम चलते हैं, तो उस लिहाज से और फिर ये पानी का बहाव भी इस तरह है, तो नए जो यूनिट आए हैं वो ग्रिड में शामिल हुए हैं, बिजली इजाफी उसमें पैदावार, तो ये सब चीजों ने लोड शेडिंग को यकीनन खत्म करा है। लेकिन ये सस्टेनेबल बुनियाद पर हो और ये तभी वैसे ये चलना चाहिए। और इसमें करके ने अपने दिन रात काम करके खत्म किया। दूसरा मोहम्मद है पोर्टेबल रेट पे बिजली, यानी कम रेट ऊपर बिजली की पढ़ाई, उसमें अभी गंदा काम है, क्योंकि बिजली की जो रेट है हमारे एनर्जी जो है पैदा करने वाले महंगे होते हैं, हाइड्रो की बिजली पैदा करने बिजली करके एनर्जी मिक्स को कम करना है, ताकि बिजली अफोर्डेबल रेट के ऊपर
मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये भी फरमाइएगा, अगर जब हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, सनअतों पर असरात की भी हम बात करते हैं, अगर पाकिस्तान जो है तवानाई का जो बहरान है उसको मुकम्मल तौर पर हल करने में कामयाब होता है, और सी पैक के तनाजुर में अगर बात की जाए हमारे जो सनअती शहर है फैसलाबाद का, अगर मैं हवाला दूं कराची की, अगर मैं बात करूं हमारी इंडस्ट्री जो है वो जमकर चलती है, क्या में अम का मसला हल होता है, तो इस खित्ते में आप पाकिस्तान की तकदीर को किस तरह से देखते हैं?
बिल्कुल, देखिए ग्रोथ का ताल्लुक है, अगर एनर्जी पूरी सप्लाई होगी हमारी सनत को तो हम जीडीपी इजाफी हासिल कर सकेंगे। तो अगर 4-5% है तो 8% एक बहुत ही फ्लेक्सिबल आखिर को ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ के माने ये है कि नए मुलाजिम तक मौके पैदा हो रहे हैं, माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ी है और इस मुल्क में खुशहाली लेकर आएगी। तो एनर्जी का ताल्लुक पहियों से चलने का है और मशीनों का ताल्लुक चलने का नई मालूमतों के मुवाफे से है, खुशहाली से। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने खसूसी तौर पर सराहा है हुकूमत के इकदाम को जो तवानाई बहरान के हल के हवाले से अमली तौर पर लिए गए, और इन्हीं की बदौलत आज 5,000 से जो जायद फीडर्स हैं उन पर लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया गया है, एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। राणा कैसर, आपसे भी गुफ्तगू हो रही थी, अगर मैं अपने सुनने वालों को अपडेट करती चलूं कि पंजाब के जो मजीद 4,128 फीडर्स हैं जिनको मुकम्मल लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दिया गया है, इसके बाद से पंजाब में मजमूई तौर पर 4,344 फीडर्स में जीरो लोड शेडिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध के 180 फीडर्स को लोड शेडिंग से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया गया है, और इस तरह मजमू तौर पर सिंध में 204 फीडर्स में लोड शेडिंग नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 249 फीडर्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे से मुस्तफीद होने वाले फीडर्स की मजमू तादाद 309। कोयटा के हवाले से अगर मैं अपने सुनने वालों को बताऊं तो 49 फीडर्स ऐसे हैं जिनका इजाफा कर दिया गया है, और लोड शेडिंग से छुटकारा पाने के लिए फीडर्स की मजमू तादाद जो है वो 61 हो गई है। आपकी जानी बात नहीं, तमाम सूबों को, इसमें मैं फाटा का भी जिक्र करूं कि 29 फीडर्स शामिल किए गए हैं जो लोड शेडिंग से मुकम्मल इस्तिस्ना मिल जाएगा। मिर्जा इख्तियार बेग भी बात कर रहे थे, अगर इक्तसादी तौर पर जैसे आपने भी सबसे पहला अहम नुकता उठाया कि हमारी जो मुआशियात हैं वो इससे बराह रास्त ताल्लुक रखती हैं, उसके असरात की आप बात कर रहे थे राणा साहब।
जी, अब आप देखिए कि पाकिस्तान में टोटल 8,600 फीडर्स हैं, जिनमें से 5,297 जो है वहां पे जीरो लोड शेडिंग का कल अनाउंस कर दिया गया, और उसमें भी देखिए कि ये वो हैं 5,200 स्थान में जहां पे लाइन लॉसेस जो हैं वो 10% से कम है, उससे ज्यादा नहीं। ये कैटेगरी वन आती है। अब कैटेगरी वन के जो फीडर्स हैं वहां पे जीरो लोड शेडिंग है, और साथ ही कल जो बताया अवैस लगारी साहब ने कि इस वक्त नेशनल ग्रिड में जो बिजली जा रही है यानी जो हम जनरेट कर रहे हैं वो है 16,477। अब ये है देखिए, सर्दियों का मौसम है, इसमें कंजम्पशन जो है बिजली की काफी हद तक वैसे भी कम होती है, आपके पंखे भी नहीं चल रहे, एयर कंडीशनर्स नहीं चल रहे, बहुत सारी चीजें हैं, एक तो ये वजह भी इसकी है। दूसरा 2700 मेगावाट इस वक्त हमारे पास सरप्लस है। अब सरप्लस जो है उसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो जरूरत है उससे वो ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजली प्रोड्यूस करना बंद कर दें, ये तो हालात पे डिपेंड कर रहा होता है कि समटाइम्स आपकी जनरेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, समटाइम्स वो बढ़ रही होती है और कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन बढ़ रही है, चीजें चल रही होती हैं। अब आप देखें कि पिछले यानी इस साल गर्मियों में जो प्रोडक्शन थी वो थी 20,000 मेगावाट, ये अचीव किया, और हमारी डिमांड थी 24,000 मेगावाट। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि इस 2018 समर्स में हमारी जो प्रोडक्शन हो जाएगी नेशनल ग्रिड में जो बिजली जाएगी वो तकरीबन 25,000 मेगावाट होगी। अच्छा फौजी, इसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम कहते हैं कि हमारी जनरेशन और प्रोडक्शन बढ़ गई है तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि एक बड़ी बारीक सी बात है कि आपकी हर साल जो डिमांड है वो पिछले साल से 12 से 14% बढ़ भी रही होती है। उसकी रीजन एक तो इंडस्ट्री, जैसे हम बात करते हैं कि ये इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो इकॉनमी इसलिए बेहतर हो रही है कि दीगर जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं इकॉनमी के वो काम करना शुरू हो जाते हैं, और जो इन्वेस्टर पहले बाहर जा रहा था वो यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, आपकी नई इंडस्ट्री आ रही है। अच्छा, वो 12 से 14% जो है वो तो हर साल इंक्रीज होनी है। हमें ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में हमारी वो जो इंक्रीज हम जिस तरह अपना देखिए, हाउसिंग सेक्टर आपका बढ़ रहा है, बहुत इंडस्ट्री लग रही, जैसे मैंने आपसे कहा तलब में इजाफा होगा हर साल, तो उसको भी हमने सामने रखते हुए पॉलिसी मेकिंग करनी है। तो अभी देखें, एक बात हो रही है कि ये बाकी जो फीडर्स हैं वहां पे क्यों नहीं जीरो टॉलरेंस, जीरो लोड शेडिंग, बेसिकली जीरो टॉलरेंस ही है ये। उसकी वजह कि जहां पे लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं और चोरी होती है बिजली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुल्क में। ये तो देखें हो नहीं सकता कि अगर मैं, अब देखें मैं अगर बिजली की कीमत अदा कर रहा हूं जितनी मैं इस्तेमाल करता हूं, और फिर भी मेरे इलाके में अगर लोड शेडिंग इस वजह से हो कि वहां पे लोग चोरी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर मेरे साथ ये जाती है कि मुझे वाई शुड आई बी सफरिंग फॉर दी फॉल्ट्स एंड क्राइम्स ऑफ अदर्स। लेकिन चूंकि वो एक फीडर में मैं रह रहा हूं, वहां पे लोग चोरी कर रहे हैं, लिहाजा मुझे भी वो बर्दाश्त करना है। अच्छा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अगर कहीं पता चलता है बहसियत शहरी, जिसका मुझे नुकसान हो रहा है कि मैं पैसे भी दे रहा हूं और लोड शेडिंग भी हो रही है, या तो ये कि मैं पैसे ना दूं फिर तो ठीक है, अब मुझे ये एज मेरी सोशल और नेशनल ऑब्लिगेशन है और मॉरल ऑब्लिगेशन है कि मैं ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करूं कि जिन जो चोरी करते हैं, जिन्होंने कुंडे लगाए हुए हैं, ताकि मुझे मेरा हक मिले, और अगर कोई ऐसे कर रहा है उसको कानून के मुताबिक सजा मिले। ये तो इसका एक आप देख लीजिए, सोशल मॉरल एक ऑब्लिगेशन है ये हमें इसकी तरफ इंडिविजुअल्स को आना है। क्योंकि बहुत लोग होंगे जी उन इलाकों में, इसलिए वहां पे उन्होंने कहा कि अगर आप चोरी करेंगे तो यू हैव टू फेस लोड शेडिंग, और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली ऑनेस्ट हैं, वो नहीं ऐसा काम करते, वो भी सफर कर रहे हैं। अब ये उनके ऊपर मजीद एक उनकी ऑब्लिगेशन आ गई कि दे हैव टू पॉइंट आउट, दे हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट दोस जो ये काम कर रहे हैं। एक तो ये, अब आप देखें कि हम जब लाइन लॉसेस की बात करते हैं तो उसमें लाइन लॉसेस में एक तो ये फैक्टर है थेफ्ट का,
जी बिल्कुल,
दूसरा फौजिया हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो फरसूदा हो चुकी हैं बहुत ज्यादा, और उनको भी रिप्लेस करना है, वो बहुत बड़ा ह्यूज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, 100 अरब से ज्यादा आपको जरूरत है। लेकिन ये हमें बात बता दी जाती है जी कि इस पे इतना खर्चा होगा। अच्छा, जब से हमें ये कहा जा रहा है जी, पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि जी हमारे लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं और हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है, तो उसलिए हमने देखें, आप अगर एक इन वन गो आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी थोड़ी करके कुछ एरियाज को ईयर मार्क करके आगे बढ़ते जाए। अगर 20 साल से जब से कौम को बताया जा रहा है जी कि लाइन लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन लाइन नहीं, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स माजी में ये काम शुरू कर दिया होता तो कम अज कम जब ये 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है तो एटलीस्ट लाइन लॉसेज और ट्रांसमिशन का मसला जो है वो तो हल हो चुका होता। अब आप चले पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने ये तो ओवरकम कर लिया क्राइसिस, अब आगे आपको बढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन की तरफ। मेरा ख्याल है कि पहला स्टेप ले लेना चाहिए, कुछ एरियाज को आप डिवाइड कर लें। ठीक है, आपके पास 100 अरब नहीं होगा तो आप इसका मतलब काम ही नहीं शुरू करेंगे। अगर आपके पास 5 अरब है, 10 अरब है, 4 अरब है, आप स्पेयर करें, कुछ एरियाज को आप अपग्रेड करते चले जाएं। तो ये ना हो कि अगले साल हमें ये पता चले, बल्कि 2018 में, कि जनाब हमने तो जनरेट बहुत बिजली कर ली है लेकिन चूंकि लाइन लॉसेज इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये वक्त से पहले हमें भी तैयार रहना चाहिए कि ये कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त ये कहा जाए कि जी लाइन लॉसेज बहुत ज्यादा है। तो चूंकि चोरी का मामला, उसको तो सख्ती से निपटना है, उसके लिए सजाएं भी हैं। और सजा वैसे बाय द वे आज तक मैंने तो ना सुना है ना पढ़ा है किसी अखबार में कि किसी बिजली चोरी करने वाले को सख्त तरीन सजा दी गई और उसका कनेक्शन जो है वो काट दिया गया।
अच्छा, इसका हवाला मैं आपको जरूर दूंगी कि इस्लाम बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लम्स हैं, कच्ची बस्तियां हैं। मैं यहाँ की बात करूंगी क्योंकि हम यहाँ के रिहायशी हैं। इसी तरह से मुल्क के दीगर सूबों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, इससे मिलती जुलती होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो कुंडा, जिसको हम बोलते हैं
कुंडा
लगाया और आपने बिजली चोरी की, और
कराची जैसे बड़े शहर में होता रहा,
कराची में बहुत ज्यादा इसकी कंप्लेंट थी और बिजली का बड़ा हिस्सा
बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो इसमें मुलव्वस हैं। देखें, एक दो चीजें होती है,
लेकिन अगर आप कंप्लेन करते हैं, मैं ये बताना चाह रही थी क्योंकि मैंने की थी एक दफा, जब आप कंप्लेन करते हैं तो फौरी तौर पर महकमे के लोग आते हैं और वो कार्रवाई,
वो भी मुखमुखाई हो जाता बाज़ुकात के, वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप बताएं आइंदा ना करना, बस मुखमुखा करके। लेकिन मसला ये है कि वापडा के डिपार्टमेंट के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी। जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला। और इसमें इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर, अब वापडा भी देखें, वो ठीक है वहां पे इरेगुलरिटीज और रिस्पांस उस तरह का उस लेवल पे नहीं है जो कि पब्लिक सर्विस के इदारों में होना चाहिए। लेकिन इसके साथ देखें एक और बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट के बड़े इदारे जो हैं वो इतने बड़े डिफॉल्टर्स हैं। ये नेशनल असेंबली में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अक्सर ये सवाल वहां पे पूछा जाता है कि वापडा और यानी ओवरऑल जो बिजली के मामले में कि डिफॉल्ट किन्होंने किया हुआ। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा वो तो चले, वो तो बेचारे नरगे में आ ही जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस, उनको अपना बिजनेस चलाना वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज तक बड़े बड़े इदारे जो हैं वो आपके बहुत बड़े डिफॉल्टर, अरबों रुपए के डिफॉल्टर हैं। तो अगर आप वो डिफॉल्ट ही क्लियर करवा लें तो कम अज कम ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन वाला मामला है ना, काफी हद तक इफ नॉट 100% आई वुड से यार 30-40% तो आप इसको रिजोल्व कर लेंगे उधर से अपना डिफॉल्ट रिकवर करके। प्रॉब्लम ये आ रहा है, हम इदारे तो चला रहे हैं कोई भी इदारा हो
जी,
लेकिन उन इदारों को हमने उनके रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ, ना उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना उनको फाइनेंसेस दे रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। क्यों तबाह हो रहे हैं, किस लिए कि हमारी प्रायोरिटीज वो नहीं है। और देखें हर मुआशरे में, बल्कि मुआशरा के हर रियासत के अंदर, रियासत के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं
जी,
लेकिन हम सिर्फ चंद एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले लेते हैं बस, बाकी को हम भूल जाते हैं कि वो आपके आप उनको तबाह कर दिया। हमने क्यों किया कि हमारी पॉलिसीज बड़ी मायोपिक रही, हमारी तवज्जो कुछ और थी, हमारी प्रायोरिटीज में वो नहीं थे। अब मैं क्या नाम लूं, आपको खुद मालूम है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में इसीलिए खराब हुए कि पॉलिसीज नहीं थी
जी।
और वो फिर कहते हैं जी कि इदारे काम नहीं करते, इसलिए कि इदारों से काम लेने वाले नहीं है। ये वापडा क्यों खराब हो रहा, देखिए इसको क्यों कहा जाता था कि सिंकिंग शिप है वापडा। एक आप एक जमाने में बड़े बड़े इदारे जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसके बाद आप वापडा देखें, पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनको आप देख लीजिए, कितने बड़े इदारे जो तबाह हो गए, क्यों हुए, स्टील मिल्स आप देख लीजिए कि तवज्जो नहीं। तो बात यह है कि हमें जब ये इल्जाम लगा देना, ये बात कर देना कि ये इदारे तबाह हो गए, ये बहुत आसान, कैसे हुए, किसने किए और क्यों हुए, वो सवाल सबसे बड़ा है।
बिल्कुल, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, कैसे हुए खसारे और कैसे नुकसानात हुए, कैसे इदारों की अगर हम एफिशिएंसी कारकर्दगी की बात करते हैं तो हमें शायद उस तरह से तरक्की याफ्ता या जो हमसे बेहतर ममालिक हैं उनकी सफ में हम नजर नहीं आते। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे समाजी मसाइल की मैं बात करूंगी, सोशल इवन
मॉरल बहुत बड़ा फैक्टर
कहा जाता है, मॉरल बिल्कुल, मैं उसी नुक्ते की जानिब आना चाह रही हूं। और खास तौर पर जो हमारा एक फर्द का किरदार होता है उसकी बात करूंगी, क्योंकि अगर हम इफराद के इकदार जो फर्द है उनके अपने इंडिविजुअल किरदार की बात करते हैं, तो जैसे आपने बात की बिजली चोरी की, जैसे आपने बात की लाइन लॉसेस की, ठीक है, और फिर जब आपने इदारों की बात की राणा कैसर, तो हमें नजर आता है कि हम जैसे फर्द ही इदारों में बैठे हुए हैं, हम जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वही इदारों में मौजूद है और उनका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसमें कोई शक नहीं है फौजिया। देखें, हम एक बात कहते हैं कि
मैं आपका नुकता बिल्कुल लूंगी, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत अहम रहनुमा है, नामवर सियासतदान है शेख रुहेल असगर, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 50,000 से ज्यादा जो फीडर्स हैं उन पर जीरो लोड शेडिंग का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरजीह थी कि हमें अमन का मसला, तवानाई बहरान का हल और इक्तसादी जो इस्तेहकाम है उस, तो क्या कहते हैं आप इस खुशखबरी के हवाले से?
मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, मेरी 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 थोड़ी डिफरेंट बदकिस्मती से, मैं बदकिस्मती कहूंगा कि हम किस चीज को बता ही नहीं सके, एक्सपोज ही नहीं कर सके कि पिछले 2 साल से इंडस्ट्री जो है जिससे आप चूल्हा चलता है, अब लोगों को ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस चीज से आपके घर का चूल्हा जलता है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है, वो है आपके कारोबार। उस कारोबार में मैं तो एक बात मर्ज करना जा रहा हूँ, जो आप शायद आपको पहले इल्म होगा कि पिछले 2 साल से वहां पे जीरो लोड शेडिंग है
जी।
जो आपकी फैक्ट्रीज है उसके फीडर्स पे लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन हम किसी से उसको बात एक्सपोज कर ही नहीं सके। अब जब के लोड शेडिंग 0% बाकी डोमेस्टिक पे आई है
जी,
इसके साथ इंतहाई जरूरी जो है वो है आपकी रिकवरी प्लस आपकी थेफ्ट प्लस और इस किस्म के जो मामला है उन पे काबू पाना
जी।
बेशक के आपने काबू पा लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपका डेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा अगर आप इस चीज पे काबू नहीं पाएंगे। ये तो बात ठीक हो गई, डोमेस्टिक में आपकी लोड शेडिंग हो गई। अब एक मैं चीज और आपके साथ शेयर कर लूँ, आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए बेहतर होगा
जी।
सबसे ज्यादा अगर किसी में आपकी लॉसेज आते हैं तो वो है आपके जो डोमेस्टिक फीडर्स है
जी,
क्योंकि जो इंडस्ट्रियल फीडर्स है वो चूंकि डायरेक्ट फीडर से आपकी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो लिहाजा वहां पे तो 0% चार्जेज लगाए जाते हैं जेट के। अब इस चीज को अगर आप इस चीज को रोक लेते हैं तो फिर आपके पास बेइंतहा सरप्लस बिजली आपके पास मौजूद होगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सेक्टर्स में, तो इसलिए इसको आप खुशी का बाइस तो आपके लिए है, ये नवी तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें अपनी बेहतर करने की भी बहुत जरूरत है।
बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर, आपने बहुत अहम जो नुकात थे उनकी बात की आपने, खसूसी तौर पर हिकमत अमली क्या होने चाहिए, इकदामात मजीद क्या किए जाने चाहिए, और कमर्शियल जो लोड शेडिंग नहीं हो रही उस हवाले से भी बताया कि ये तो शायद हमारे सुनने वाले उन हवालों से आगाह ही नहीं है। सामिन इन तमाम नुकात पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से नया दिन।
ऐ दुनिया के मुनसिफों, सलामती के जामिनों, कश्मीर की वादी जल रही है कई दहाइयों से, भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार मकबूजा कश्मीर के मासूम और बेगुनाह शहरियों का लहू, सलामती के जामिनों आपको पुकार रहा है। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम सलामती कौंसिल की पास शुदा करारदादों पर अमल दरामद के मुंतजर। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल से सुनिए अखबार शाम 5:05 से 6 बजे तक, खसूसी प्रोग्राम ऐ दुनिया के मुनसिफों। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل، صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں۔
خوش آمدید سامعین، آپ کو ایک بار پھر ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ نیا دن ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کا، جو میں سمجھتی ہوں بڑا اہم ترین، اور آج کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے کہ 60% سے جو زائد فیڈرز ہیں ان پر زیرو لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور آپ نے سننے والوں کو بتایا، جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ روحیل اصغر، انہوں نے بھی بتایا ایک دفعہ پھر سے، انہوں نے کہا کہ کمرشل جو لوڈ شیڈنگ تھی صنعتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شاید سننے والے اس سے آگاہ نہ ہوں، اور اب اگر ہم ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں، گھریلو جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی شہروں میں اور دیہاتوں میں جو آبادی کے علاقے تھے، تو وہاں پر بھی جو شہری تھے وہ 60% سے جو زائد فیڈرز ہیں مستفید ہو سکیں گے کہ وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ رانا کیسر، جیسے ہم بات کر رہے تھے چوری کے حوالے سے، جو بجلی چوری کی جاتی ہے لائن لاسز کے حوالے سے، تو جو بجلی چوری کی جاتی ہے اس کے حوالے سے اگر میں حوالہ دوں تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک میں اس وقت جو اویس لگاری نے کوٹ کیا ہے کہ 16,470 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، تاہم 10% بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں 2 اور 20% میں 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ابھی بھی جاری رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ ہو تو لوگ شاید سوچیں کہ اعلان کیا گیا تھا 60% سے زائد جو فیڈرز ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایک بڑی وجہ یہ ہے جس کی جانب آپ نے اس سے پہلے بات بھی کی۔
دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ بجلی چوری کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ کو نقصان ہوگا بلکہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں، جتنی کنزیوم کرتے ہیں تو ان کا بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ یعنی کسی ایک کے جرم کا किसी दूसरे को जो है नुकसान सजा तो कभी नहीं दी जा सकती। अब ये इसमें ये होना है, इसके लिए मैं कहता हूं कि इसीलिए कह रहा हूं कि एक तो वो इंडिविजुअल्स जो हैं जो पैसे पे कर रहे हैं और जो चोरी नहीं करते, ये उनका है कि आए ना दें फिर धरना उन लोगों के खिलाफ जो चोरी करते
चोरी
हैं। हुकूमत के खिलाफ तो हर कोई धरना देता है
जी।
यहाँ भी आप अपने मोहल्लों में निकलें, आएं बताएं कि जनाब ये हमारे मोहल्ले में ये हो रहा है, और साथ ये भी कहें कि जी मेरी गली में तो कोई चोरी नहीं हो रही लिहाजा मुझे बिजली दे, फिर आएं मांगे फिर बिजली अपना राइट मांगे ना। फिर ये चीजें होती हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ
बिजली चोरी हो गई है तो आप कंप्लेन करें, आप बताएं और आप उसको रोके।
अब देखिए फौजी होता क्या है, एक फीडर है वहां पे आप देख रहे हैं कि बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है, वो तो जाहिर है कि मीटर्स लगे हुए हैं, पता होता है किस इलाके में कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, उसका रेवेन्यू अगर उसको मैच नहीं कर रहा इसका मतलब वहां पे चोरी हो रही है।
बिल्कुल,
और इसलिए उन्होंने कहा कि जहां चोरी होगी वहां पे लोड शेडिंग होगी।
और जब राना कैसे बिजली चोरी होती है तो बिल भी बहुत ज्यादा आते हैं और आप कहते
हैं वो डिवाइड होता है,
क्या चल रहा है घर में,
वो डिवाइड हो जाता है,
वो सब लोगों को भरना पड़ता
है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लोगों के ऊपर अब आ गई बात, मेरा ख्याल ये बिल्कुल ठीक फैसला किया है अवैस लगारी साहब और हुकूमत ने कि जनाब जहां बिजली चोरी होगी वहां पे लोड शेडिंग होगी। अच्छा, लेकिन एक बात फिर उसमें मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने तो अभी तक नहीं सुना, बात तो हम करते हैं सारे कि हुकूमत भी हमें कहती है, इदारे भी कहते हैं बिजली चोरी होती है, तो आपने उसकी तशहीर की, कितनी तशहीर की कि जिन्होंने बिजली चोरी की और उनको क्या सजाएं दी, क्या ऐसा कानून है कि उसको इनको लेके जाए फिर मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में, इन चीजों को भी लेके जाए। ये देखें ये समरी ट्रायल चाहिए, यहाँ पे नहीं कि एक बंदा अगर बिजली चोरी करता पकड़ा गया उसने जमानत कराई और 6 महीने उसका केस नहीं लग रहा और सजा नहीं हो रही, ये फिर नहीं। देखें ऐसे नहीं होता,
सजा और सजा का अमल जो है वो तेज भी होना
चाहिए, तेज होना
चाहिए,
ये कौम ये नेशनल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है ये भी। कि आप देखें आप चोरी कर रहे हैं, रेवेन्यू दे नहीं रहे, आप पैसे नहीं दे रहे, आप सिस्टम कैसे इम्प्रूव करेंगे, लाइन लॉसेज जो है चले चोरी के अलावा वो ट्रांसमिशन लाइन्स को आप कैसे जो है वो रिप्लेस करेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप कैसे ठीक करेंगे, नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूं अब देखें हम बात करते हैं ना वेस्ट की, बहुत हर कोई मिसाल देता है जी वेस्ट में देखें ये होता है, वेस्ट में कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एग्जेम्पशन नहीं है, कोई एहसान नहीं करता अगर कानून की पासदारी करता है, जी मैंने तो ये कोई भी कानून है उसको मैं अमल दरामद करता हूं तो ये किसी पे एहसान नहीं होता। वो अगर आप अपना सर कानून के सामने झुकाते हैं तो आप एहसान नहीं कर रहे होते, आप कानून ये आपका फर्ज है कि आपने एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर हर किस्म की जो पाबंदियां मुआशरे में और कानून के तहत है आपको उनके सामने सरनुगु होना है।
बिल्कुल,
यूरोप में इतना सख्त कानून है, कोई बंदा स्पेयर नहीं है, चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है या आम आदमी है, जो अगर जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको देनी, उसको भुगतनी है, फाइन होना है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो इसके लिए फजिया पूरा सिस्टम ठीक करने की भी जरूरत है, सिर्फ हम वापडा के हवाले से बात नहीं कर रहे, तमाम इदारों में जब तक आप अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त नहीं करेंगे कि लोगों को ये खौफ हो कि अगर मैंने ये काम, अब तो क्या है अब लोगों को खौफ ही नहीं है, हो गया मुकमुका हो जाएगा जी, वो जो केस है अदालत में चला जाएगा, क्या है
तो
जमानत करा लेंगे, स्टे करा लेंगे, बड़े वो कोई मसला नहीं जी हो जाएगा। ये जब रवैये मुआशरे में आ जाते हैं ना तो फिर वो मुआशरा इन्हतात का शिकार होता है और वो आगे नहीं बढ़ता, उसके इदारे तबाह होते हैं
और वो फिर हुकूमतों से भी जवाबदेही नहीं करता।
नहीं करता।
ये बात है कि जैसे हम टैक्स ना दें लेकिन हम चाहें कि हमारे लिए जो है सरकारी अस्पताल बनाए जाए, हमें सेहत की सहूलियत हो, हमारे लिए पब्लिक पार्क,
लेकिन वो चलाने कैसे, वो पैसों से चलेंगे ना,
पैसों से चलेंगे।
एग्जैक्टली, लेकिन उसके साथ मैं समझता हूँ कि देखें इसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन तो मुश्किल हो जाती है करनी कि जी किसके साथ क्या ट्रीटमेंट की जाए, लेकिन देखें जो लोग जेन्युइनली ऑनेस्टली अपना किरदार अदा कर रहे हैं नेशनल बिल्डिंग में, अपना जो उनका जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज है वो पूरी कर रहे हैं, वो असल में तो नुकसान उनको हो रहा है, इसलिए कि डिस्पाइट पेइंग इनकम टैक्स, डिस्पाइट ओबेइंग लॉ, हर काम करने के बार डिसिप्लिन फॉलो करने के बावजूद अगर उनको नुकसान हो रहा है तो डिसग्रंटेड वो होते हैं कि हम लोग हम कर भी रहे हैं, हम टैक्स भी पे करते हैं, हम ऑनेस्टी के साथ लॉ हर काम कर रहे हैं, लॉ को भी अबाइड करते हैं, मॉरल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक तमाम ऑब्लिगेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल उनको वो पूरा भी कर रहे हैं एंड स्टिल दे सफर, व्हाई, ये बहुत बड़ा सवाल है।
आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारी सोसाइटी में जो चंद ऐसे अफराद हैं, मैं ये नहीं कहती पूरा मुआशरा, लेकिन जो चंद ऐसे अफराद हैं जो इन चीजों का इरतकाब कर रहे हैं, हमारे मुझे और आपको और हमारे सुनने वालों को जो जो इस वक्त हमें सुन रहा है, शायद उनके शऊर में ये बात उनको अच्छी लगे कि ये हमारी जिम्मेदारी उनको रोकना भी है।
जी हाँ।
अगर आपको पता चलता है, आपको पता है जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो उसके लिए भी मुख्तलिफ हर बेस
कंप्रेसर्स लगा लिए जाते हैं घरों में। आप देखिए सर्दियों में होता है क्या, एक तो ठीक है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम उसका गैस का भी थोड़ा सा इम्प्रूव होने वाला है, तमाम इलाकों में नई पाइपलाइन बचती है तो ठीक है, लेकिन आप जब उस पर प्रेशर आता है ना सर्दियों में खास तौर पर कि आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, गीजर्स चल रहे हैं, हीटर्स चल रहे हैं, कुकिंग वाला मसला इतना वो नहीं होता, वो तो एक रूटीन है, गीजर्स एंड हीटर्स। अच्छा सारा दिन चल रहे हैं, फिर इवन जनरेट जिन इलाकों में आप देखिए बिजली की लोड शेडिंग होती है वहां पे गैस से आप जनरेटर चला रहे होते हैं ताकि वो बिजली आपके घर में आए।
अच्छा हर तरह की जो
कंजम्पशन जब गैस की एक तो बढ़ जाती है इसलिए प्रेशर उस पर लोड आ जाता है, दूसरा सर्दियों में आपको मालूम है कि गैस थोड़ी सी उसकी तरसील जो है वो स्लो हो जाती है
क्योंकि
जम जाती है, स्लो हो जाती है, लाइन्स वो ठंडी होती हैं, तो उससे एक फर्क पड़ता है। फिर लोग क्या करते हैं अपने घरों में कंप्रेसर्स लगा लेते हैं। कंप्रेसर एक तो बड़ा खतरनाक काम है, उसे इंसानी जानें जा सकती हैं, लोग लगाते हैं, लेकिन वो क्या करें, लोग कहते हैं जी की करिए, सुबह बच्चों ने जनाब जाना है, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, तो जनाब नाश्ता कहां पर बनाए। अब वो जमाना चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट भी आपके पास नहीं है ऐसा कि आप गैस की, अब फिर लोगों ने घरों में सिलेंडर भी रख लिए, जो समझते हैं अच्छा यार इस टाइम पे गैस नहीं होनी हम सिलेंडर रख लें, तो बहुत सारे इश्यूज हैं इन, इसलिए मिन हसल कौम हमें अपने रवैये तब्दील करने और ईमानदारी के साथ, ये ईमानदारी के साथ।
आपने सही बात की, लेकिन हम मेरी जो खवातीन बहनें मुझे सुन रही हैं, जब वो चूल्हा खुला छोड़ देती हैं और माचिस नहीं जलाती दोबारा से, मुझे उस
तो बुरा
नाराज होता है कि अभी चूल्हा जलता रहने दे चाय बनाने के बाद या नाश्ता बनाने के बाद कि मैंने अभी खाने के लिए कुछ रखना
है, पायलट पे कर देंगे, इवन पायलट भी कर देंगे, कंज्यूम हो रही है,
लेकिन वो चूल्हा खुला छोड़ना जो है ना, चूल्हा जलता रहना ये भी
बहुत ज्यादा नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चूल्हा जो है वो खुला छोड़ दिया चलता हुआ, बिल्कुल स्लो उस पे कर दिया, लो लाइट पे फ्लेम पे कर दिया, खुदा न खास्ता वो बाज़ इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है कि वो अगर फर्ज कर लीजिए किसी वक्त वो गैस
सप्लाई रुक गई,
वो रुक गई तो गैस आती है तो वो तो आती रहेगी, तो आपका घर पूरा जो है एक बॉम्ब बन जाता है। तो वो खैर बहुत सारे हमारे रवैयों की वजह से आपको मालूम है, आप जानती हैं कि अक्सर खबरें आती हैं कि गैस की लीकेज की वजह से लोगों की जानें भी चली जाती हैं और धमाके हो जाते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे बिजली के हवाले से, देखिए
बिजली के हवाले से भी बात करूंगी, आप माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लग ऑन है, आप इस्त्री ऐसे ही छोड़ देंगे, आपने चार्जर जो है बटन ऑन है, मोबाइल उतार लिया, ये वो हमारे रवैये हैं जो तलब में इजाफे का बायस बनते हैं। अब जाहिर हमें नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर हर घर में यही सूरत हाल होगी और शायद हमारे घर में जितने भी कमरे होंगे सबकी सारी लाइट्स ऑन होंगी, तो ये वो रवैये हैं जो शायद तलब में इजाफे का बायस बनते हैं। हमारा तर्ज जिंदगी तो तब्दील हो ही चुका, अभी बात की कि शहरी और देहाती जिंदगी में फर्क को मिटाने की कोशिश हुकूमत ने की है, 60% से ज्यादा जो फीडर्स हैं उन पर लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान जो किया गया है, लेकिन उसमें एक बड़ा अमल दखल हमारे तर्ज जिंदगी का भी है। राना कैसर, पहले हमें नजर आता था कि हर चीज जो है शायद हाथ से बहुत सारे काम हो जाते थे, अगर मैं देहातों की बात करूं फर्क मिटाने की बात हुई है तो हैंडपंप से पानी निकलता, अब हर जगह पे वो डोंकी पंप जिसको कहा जाता है या मोटर के जरिए पानी निकलता है, अगर चारा जो कुतरने वाली मशीन है अब वो भी बिजली पर चलती है, अब जो हम वो मक्खन दही और लस्सी की बात जो हम
चर्नर जो है वो भी सारे बिजली
से, तो वो सारी भी आलात जो है बिजली से इस्तेमाल होते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो तर्ज जिंदगी है वो भी बदल चुका है और यही हमारे रवैये जिनको हमने कंट्रोल करना है अपने इस्तेमाल के लिए, सिर्फ हमने बटन ऑन नहीं रखना कि आपने अगर मोबाइल का चार्जर या कोई भी चीज ऐसी आपके बर की आलात जो है वो ऑन है, बटन ऑन है, आपकी जो फ्रिज है अगर सर्दियों में शायद डीप फ्रीजर की नहीं भी जरूरत हो राना कैसर वो भी ऑन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, तो हमारे घर में बिजली आ रही, शायद हम बिल 25,000-30,000 अदा कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों से मजमूई तौर पर बहुत गहरा असर पड़ता है, हमें इस तरफ भी सोचना है। और आप थोड़ी देर सोचिए, मैं वापस आती हूँ मुख्तसर से वक्फे के बाद।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, हालात हाजरा पर अपने सामईन को बाखबर रखने का अहम जरिया। इस्लामाबाद से 1152 किलो हर्ट्ज़ पर, कराची से 639 किलो हर्ट्ज़, लाहौर से 1332 किलो हर्ट्ज़, पिशावर से 1260 किलो हर्ट्ज़ और क्वेटा से 756 किलो हर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
خوش آمدید سامعین، ایک بار پھر سے ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ پروگرام سن رہے ہیں نیا دن۔ میں ہوں فوزیہ کلثوم رانا، پروگرام کی میزبان، اور میرے ساتھ تبصرے اور تجزیے کے لیے موجود ہے سینئر صحافی معروف تجزیہ کار رانا قیصر۔ آپ کو ہم نے موقع دیا تھا تھوڑا سا سوچنے کا، اور میں امید کرتی ہوں جو جو ہمیں سن رہا ہے انہوں نے سوچا ضرور ہوگا کہ آپ نے آج سے سوئچ ضرور آپ نے آف کرنے ہیں، بٹن سارے آف رکھنے ہیں۔ اگر آپ روم میں نہیں ہیں تو اس کمرے کی جو لائٹ ہے، اس واش روم کی جو لائٹ ہے، وہ آف ہونی چاہیے۔ چارجر ایسے نہیں لگانا، تمام تر برقی آلات جو ہے آپ نے غیر ضروری ان کے بٹن جو ہے آن نہیں رکھنے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ بجلی آپ اپنے لیے بچائیں گے بلکہ قوم کے لیے بچائیں گے، کیونکہ ایک ایک گھر سے جب ہم 10 گھروں کو یا 100 گھروں کو، کروڑ گھروں کو جمع کرتے ہیں تو اسی سے ہمارا پورا ملک پاکستان بنتا ہے۔ رانا قیصر، پھر آپ کی جانب آؤں گی۔ 5000 سے زائد فیڈرز ایک بڑی تعداد ہے، اور جیسے کہ بات ہوئی ہے جو بجلی چوری کرتے ہیں ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ہم کسی کو دیکھیں گے تو ہم ضرور کمپلین کریں گے، اس کو روکیں گے بھی۔ ہم نے اپنے انفرادی رویوں پر بھی توجہ دینی ہے، لیکن اگر اوور آل بات کی جائے، کمرشل کے لیے سب سے پہلے انیشیٹو لیا گیا اور وہاں پر زیرو لوڈ شیڈنگ رہی۔ اب اگر ہم گھریلو لوڈ شیڈنگ میں خاتمے کی بات کرتے ہیں تو 60% سے زائد جو فیڈرز ہیں ان پر بھی عملی طور پر زیرو لوڈ شیڈنگ کی خوشخبری عوام کو سنائی گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پروگرام بھی ہمارا جو ہے ابھی 10 منٹس ہے۔ رانا قیصر، اگر حکومت کوئی ترجیح بناتی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہے، سیاسی جماعت ہے، وہ منشور دیتی ہے کہ میں نے یہ ترجیحات بنانی ہے، تو شاید یہی حقیقی جمہوریت اور ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ آپ نے جو ترجیح بنائی اس پر عملی طور پر آپ عمل پیرا بھی ہوئے، چاہے سی پیک کے ذریعے میں منصوبوں کی بات کروں یا دیگر پروجیکٹس کی بات کروں۔
دیکھیں، حکومت کوئی بھی حکومت ہو، بیسیکلی لوگ ان کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں؟ ان کو اقتدار میں لاتے ہیں، ان کو پاور دیتے ہیں، ان کو اتھارٹی اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں، قومی مسائل جو ان کا حل کریں۔ اور اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ناکام ہوئے ہی، آپ ان لوگوں کو بھی ناکام کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا بیسیکلی۔ تو ماضی میں ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو پرائیورٹائز نہیں کیا، اور پرائیورٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں، آپ کو نا یہ نہیں ہوتا کہ بس میں ایڈ ہاک پہ ہی کام کرنا ہے، آج کا دن فائر فائٹنگ میں گزار دیں، کل کا دن آئے گا دیکھ۔ آپ کو اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ جناب ہم نے لوگوں کو یہ ایک ریلیف دینا، آتے ساتھ ہی آپ ایک ریلیف دیتے ہیں، لوگوں میں ایک امید کی کرن آتی ہے، وہ ہوپ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ٹینیور ہوگا پولیٹیکل، 4 سال یا 5 سال، وٹ ایور، آپ نے اس میں اپنے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، پولیٹیکل اس میں آ جاتا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ لیکن لانگ ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے فوزیہ، کہ آپ نے آنے والے دنوں کے لیے بھی اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ 15-20 سال اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو معاملات ٹھیک ہوتے جائیں۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رانا قیصر، آپ سے لانگ ٹرم کی ہم بات جاری رکھیں گے۔ لیکن اس وقت سامعین ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ہمایوں اقبال شامی، ماہر اقتصادیات ہیں۔ السلام علیکم شامی صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ 60% سے زائد جو فیڈرز ہیں ان پر زیرو لوڈ شیڈنگ کا اعلان، بڑی خوشخبری عوام کو دی گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے اگر کمرشل میں بات کروں تو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی، اب گھریلو سطح پر بھی زیرو لوڈ شیڈنگ کی نوید سنائی گئی ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر اکنامیکلی میں کہوں، آپ تجزیہ دے دو۔
جی بہت شکریہ آپ کا، یہ تو واقعی پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جن کا انتظار پاکستان کے عوام ایک بہت اچھے سے دیکھ رہے تھے کئی سالوں سے۔ آپ کو پتا ہے ملک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا شکار رہا ہے، 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہم لوگوں نے دیکھی ہے یہاں پہ، تو اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جب یہ ڈالا گیا کہ جو لوگ بل ادا کرتے ہیں ان فیڈرز کو یہ سہولت دی گئی ہے، تو یہ انکریج کرے گا باقی ملک کے ان لوگوں کو بھی جو لوگ پوری طرح بل نہیں دیتے، تو وہ بھی اس میں آئیں گے، جانے بھی ملے ہے۔ کیونکہ آپ دیکھو جو
जो मुझे पता लगा वो तकरीबन 2700 मेगावाट बिजली जो है हम अपनी जो से ज्यादा पैदावार पैदा करने के काबिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम बाकी 100 इसे गवर्नमेंट की कैपेसिटी यह है कि जो फीडर बच चुके हैं यानी जहाँ पर लोड शेडिंग होगी वहाँ भी गवर्नमेंट एक पोजिशन में है कि लोड शेडिंग खत्म कर सके, प्रोवाइडर के वहाँ के लोग हैं वो बिल अदा करना शुरू कर दें। तो ये बड़ी अच्छी खबर है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं इतना देखूंगा कि देखिए इसमें छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटी छोटी एक तो इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री को उन्होंने काफी अच्छे से लोड शेडिंग से मुबर्रा किया जाता, लेकिन जो कमर्शियल अदारे हैं जिसमें दुकानें हैं जिनमें छोटे छोटे कारोबार की छोटी छोटी वर्कशॉपें हैं, मकानी क्या कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, फोटो कापी की मशीन है, किसी को हॉस्पिटल है छोटा क्लिनिक बना रखा है, उन सब में बिजली की जरूरत होती है। बिजली ना होने की वजह से वहाँ जो काम का खर्च होता है, जो मैन आवर जाया होते हैं, जो लोगों का नुकसान होता है मौसी तौर के ऊपर, वो बैठे रहते हैं आइडल बैठे रहते हैं इंतजार करते हैं बिजली आए तो अपना काम शुरू करें, तो वो चीजें खत्म होंगी तो इससे मुल्क की पैदावार डेफिनेटली बढ़ेगी और लोगों का इंडिविजुअल रोजगार जो खासतौर पर छोटा जो हमारा छोटा कंज्यूमर है जिसको मैं छोटा शॉपकीपर जो छोटी वर्कशॉप मोटर मैकेनिक मोटरसाइकिल मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करता हूँ तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है इकोनॉमिकली उसके लिए।
बहुत शुक्रिया हमारे इकबाल शामी साहब, आपने बहुत खूबसूरती से खास तौर पर जो हमारे छोटे सार्फिन जैसे आपने बात की घरेलू सतह पर या छोटे लेवल पर जो कारोबारी हजरात है उनका आपने हवाला दिया, मोटरसाइकिल मैकेनिक है या दीगर शोबे से ताल्लुक रखने वाले, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये बड़ा फैसला है, बड़ी खुशखबरी है। सामीन इसी तरह जैसे कि अगर हम बात करते हैं छोटी सतह पर या नफ्सियाती सतह पर, मैं अगर बात करूंगी हुमायूं इकबाल शामी साहब के नुक्ते से ही मैं राना कैसर ऐड करूंगी कि उन्होंने कहा कि जैसे हमें इंतजार करना पड़ता था तो वक्त का ज्या भी खत्म हुआ, क्योंकि अगर आप उठते हैं आपने उठकर फौरी फौरी फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी प्रेस करने तो अगर बिजली ही नहीं है तो आपने एक घंटा आपने अगर इंतजार किया कि लाइट आएगी, फिर एक घंटा आप दफ्तर से लेट हुए, रोड पर रश भी था, बहुत सारे मामलात। और अगर आप ऑफिस की बात करें, मैं बाजारों की
गारंटी नहीं थी कि अगर आपने एक घंटा इंतजार किया तो वाकई बिजली आ जाएगी, ये भी गारंटी नहीं थी।
ये भी आपने खूब कहा, लेकिन यही खुशखबरी दी गई है अब हुकूमत की जानिब से कि 60% से जो जायद फीडर्स हैं उन पर जीरो लोड शेडिंग, ये वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी शायद हमें उस तरह से महसूस नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे इसके असरात, जैसे कि मैंने नफ्सियाती असरात की बात की, तो आप मार्केट में जाए तो वो जनरेटर, उनका शोर, वो धुआं, वो शायद अभी मुझे लगता है।
देखिए आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी जो आप अपनी खवातीन बहनों के हवाले से कर रही थी, तो मैं कुछ अपने मर्द भाइयों के हवाले से भी बात करता हूं कि ये देखे कि हमारे यहाँ एक अजीब कल्चर है कि दुकानें सुबह 12 बजे खुल रही हैं और रात 12 बजे बंद हो रही हैं और शाम
बाद
दुनिया भर में देखें, ये फिर वो बात, ये फिर ब्लैकमेल वाली सूरत हाल हो जाती है, लोग आ जाते हैं फिर धरने देना शुरू कर देते हैं, सड़कें बिल ब्लॉक कर देते हैं, हमाम लुट गए हमारे घर। भाई अर्ली आप अपनी शॉप खोलें ना सुबह 9 बजे, 8 घंटे के बाद बंद करें
जी। सही काम है।
और अच्छा आप
तमाम तरह मुमालिक में ऐसे ही होता है,
दुनिया में ऐसे ही होता है, नाइट शॉप्स
होती हैं
यूरोप में, आप क्या वहाँ पे बिजली वाफर है, इसके बावजूद नाइट शॉप्स होती हैं, आपने दुकानें बंद करनी है, एनर्जी कंजर्व करनी है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमने कोई काम ठीक नहीं करना और वो हमारे लोगों का जी, वो मेरा राइट भी, आपका राइट नहीं है कि आप एक दुकान के अंदर 50 बल्ब जला के बैठे हो, यहाँ पे तो यही हो रहा है, आप निकले शाम को दुकानों में जाएं 50-50 वो लगे, वो कहते जी हम तो बिल भी देते हैं, तो भाई बिल दे रहे हो, मुल्क का नुकसान कर रहे हो, लोगों का नुकसान कर रहे हो। अगर तो आपके पास सरप्लस इतनी हो जाए कि जनाब इतने लुट पै जाए ना, फिर तो ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। अगर बहुत ज्यादा है आप दीगर ममालिक को सप्लाई कर करके आगे आप रेवेन्यू में इतना कमा
रहे हैं, फिर तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए फिर वही बात आ जाती है, हर बंदा फिर सोचता है अच्छा ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बिजनेसमैन मुझे वोट नहीं देगा, मेरा ये हो जाएगा। देखें आपको इन चीजों से बाहर जाना पड़ेगा,
बिल्कुल
मुल्क के मफाद में आना पड़ेगा कि आप एक दफा इक्तदार में आए हैं, टेक द डिसीजन फर्मली इरिस्पेक्टिव के फ्यूचर में आपके पॉलिटिक्स है या नहीं है
जी।
पाकिस्तान को ठीक करने का यही तरीका है कि हम आने वाले दिन को भूल जाएं, कि मैंने आज अपना ठीक करके जाना,
बिल्कुल
दैट्स इट।
बिल्कुल बहुत कड़ा आपने मैसेज दिया, मैं तो सोची थी आप बड़ी अच्छी सी बात करेंगे, बहुत
अच्छी बात
में, लेकिन आपने सही, लेकिन आपने जो बात की है अल्फाज आपके कड़े थे लेकिन उसमें जो पैगाम है वो बहुत बड़ा।
मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक पाकिस्तानी भी हूँ और मैं फेस कर रहा हूँ चीजों को कि इफ आई पे आई डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न।
बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दिल दुखता है और जब दिल दुखता है बंदा सोचता है अपने मुल्क का, और यही जो दर्द है जो राणा कैसर के दिल में दर्द है इस मुल्क के लिए, कौमी असासों के लिए, यही हम सबको रखना है। ताकि जो बिजली की तलब की अगर हम बात करें, इसी तरह से हम अपने मुल्क के दीगर असासों की जब बात करते हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो माहौलियाती आलूदगी पर हमें काबू पाना है, जो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उन हवालों से निपटना है, तो हमें इसी तरह से सोचना।
फौजी, एक चीज और ऐड करता जाऊंगा, सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कि एक सिलसिला शुरू हुआ था कोई 8-10 साल पहले जी, कि वो ये आपने जो गाड़ियों में गैस लगानी शुरू की,
सीएनजी,
आप देखिए इतनी तबाही फैली उससे, बिजनेस तो बहुत लोगों ने किया और करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए लोगों ने, लेकिन नुकसान किसका किया, मुल्क का नुकसान किया। ये मैं नहीं कह रहा कि आप ना लगाएं, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करते, एक मोहल्ले के अंदर 10-10 आपने सीएनजी स्टेशन लगा दिए,
बिल्कुल, और उससे भी जो हमारे सार्फिन थे, जो घरेलू सार्फिन थे, वो बहुत ज्यादा
नुकसान हुआ
और अभी तक हो रहे हैं, लेकिन अभी वो आपके रिजर्व दिए गए।
देखिए बंद तो क्या फायदा हुआ कि जब आपने घर लुटा दिया और उसके बाद कहा कि मैंने चौकीदार रख लिया, ऐसे तो नहीं
जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें ना सिर्फ ये कि हुकूमती सतह पर सोचना है, उस तरफ देखना है, हमें अपना इंफरादी किरदार भी निभाना है। सामीन सोचिएगा जरूर और अपना किरदार जरूर पुख्ता बनाइएगा ताकि उससे मुल्क कौम को फायदा हो। इसके साथ ही फौजा कसम राना और राना कैसर को नया दिन से दीजिए इजाजत। सामिन, आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से नया दिन, हमारी आवाज आपकी समातों तक पहुंचाई स्टूडियो इंजीनियर जुनेद तारिक ने, मुआविन प्रोग्राम थे मोहम्मद तैयब, प्रोग्राम इंचार्ज अहमद कमाल और इस ट्रांसमिशन के निगरानी आला जावेद खान जदून को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत।